ईश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम आज के अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम परमेश्वर की निकटता में आए और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि जब हम आपके जीवित वचन पर मनन चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, सीखते हैं, तो प्रभु निश्चित रूप से आपका वचन हमें से प्रत्येक के हृदय से बातचीत करने पाए। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो किसी न किसी रूप में दुखी और निराश हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, बीमारी और तकलीफ में हैं। प्रभु जी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें, ताकि आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष को पाएं और ये जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं। इस समय हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं, हर एक से बातचीत करें। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके एक पद से आरंभ करते हैं, लेकिन इसके पूर्व हम इसके विषय को देखें। विषय है परमेश्वर के लोगों का भोजन तथा पशु को छूने के द्वारा अशुद्ध होना। इसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 14 अध्याय में पाते हैं। मित्रों, यह एक बहुत ही असाधारण अध्याय है। अब हम इस पुस्तक के मूल दिशाखंड अर्थात शाखा में आते हैं। इसका विषय बदल गया है, पुरोहितों से लोगों तक, परमेश्वर के बलिदानों से लेकर मनुष्य के भोजन तक, परमेश्वर की आराधना करने से लेकर इस संसार में चलने तक। यह परिवर्तन धार्मिक से निरपेक्ष अर्थात धर्म विरुद्ध तक बिना किसी गति या स्तर के बदल गए हैं। ऐसी कोई भी सोच या विचार नहीं है कि इसमें कोई नई बात या अलग बात है। मित्रों, आजकल हम धर्म व धर्म निरपेक्ष में एक झूठा भेदभाव करते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कुछ चर्च में होता है अर्थात कलीसिया में होता है तो वह धार्मिक है। यहाँ तक कि कलीसिया में होने वाली गपशप भी पवित्र समझी जाती है, विशेषकर प्रार्थना की जो विनती प्रस्तुत करती है। यदि गपशप कलीसिया के बाहर है तो वह धर्म निरपेक्ष समझी जाती है। मित्रों, प्रत्येक कार्य या सब कुछ जो ईश्वर की महिमा के लिए है वह परमेश्वर की महिमा के लिए है। किसी ने इस प्रकार से कहा, मैं एक खाई सीधी और सच खोदना चाहता जिसे परमेश्वर पूर्ण रीति से झांक सके। मित्रों, आप धर्म और धर्म निरपेक्ष में अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की गति सर्वत्र है। हम उसे धर्म सापेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहें, वह कुछ अंतर नहीं करता। मित्रों, यह अध्याय अद्भुत है, क्योंकि ईश्वर इसराइली लोगों के लिए भोजन और व्यंजन सूची प्रकाशित करते हैं। वे कुछ वस्तुएं खा सकते हैं, परंतु जो व्यंजन सूची में नहीं है उसे खाना मना है। अतः यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर उसके सृजित भोजन में क्या खाते इस बात में भी दिलचस्पी रखता है? क्या जिसने सृष्टि की रचना की वह मनुष्य के लिए व्यंजन सूची भी बनाएगा? इसका उत्तर इसी अध्याय में है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को विस्तार से समझता है और कोई भी विवरण चाहे कितना बड़ा व छोटा हो उसकी आंखों से नहीं चूकता, क्योंकि उसे उसमें दिलचस्पी है और उसकी चिंता भी है। किसी महिला ने ईश्वर भक्त जी कैंपबेल मॉर्गन से पूछा, क्या हमें जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए भी उससे मांगना चाहिए? उसने उत्तर दिया, महिला, मुझे यह बताएं कि ईश्वर के लिए आपके जीवन की कौन सी बात बड़ी है? देखें, हम ही अपनी समस्याओं को बड़ी या छोटी बनाते हैं। मित्रों, परमेश्वर के सामने इस प्रकार हम छोटी या बड़ी करके विभाजित नहीं करते। उसके लिए सभी समस्याएं छोटी है। कई आदेश मिलते हैं कि सभी बातों के लिए प्रार्थना करें और चिंता बिल्कुल भी न करें। इस भाग में हमारे लिए बड़े महान आध्यात्मिक सबक मिलते हैं, परंतु इसराइल से संबंधित कई वास्तविक और व्यवहारिक पहलू भी हैं जिन पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते। क्योंकि ईश्वर ने कई निश्चित जानवरों को खाने के लिए मना किया है, परंतु दूसरों को खाने की इजाजत भी दी, तो मानना भी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ऐसा किया गया होगा। उन्हें अनेक पशु पक्षी मछली खाने की आज्ञा दी थी। यह कोई अंधविश्वास नहीं था और धार्मिक कृत्य से भी अधिक की शुद्ध व अशुद्ध में भेद किया गया। चूंकि ईश्वर ने उसके लोगों के खाद्यान्न में कुछ पशु सम्मिलित किए और कुछ जानवरों को खाने में पाबंदी लगाई, तो निश्चित ही ऐसे भोजन का अवश्य लाभ होगा। इतिहास को साक्षी होना चाहिए कि परमेश्वर के पास ऐसे भले और काफी कारण होंगे जिसके आधार पर उसने अंतर किया। अब यह सत्य है कि ईश्वर ने यह शुद्ध और अशुद्ध के अंतर की सूची में पूर्ण स्वेच्छा से काम किया है, परंतु साधारणतः परमेश्वर ने अपने लोगों के हित को ध्यान में रखकर सब कुछ किया। क्या इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है? अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि जिन जानवरों को खाद्यान्न के लिए मना किया वे अधिकतर अशुद्ध वस्तु खाने वाले पशु पक्षी थे। मूसा की व्यवस्था में जिन जानवरों को अलग किया गया वे रोग फैलाने में अधिक संक्रामक थे। डॉक्टर S.H. कैलोग के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। आधुनिक विज्ञान की महान खोजों में यह तथ्य उभर कर आया है कि अधिकतर रोग जो जानवर में प्रचलित हैं उसका कारण छोटे प्रकार के परजीवी कीटाणु की उपस्थिति होती है। इस प्रकार के रोगों में वे जो अशुद्ध भोजन करते विशेष करके उन्हीं पर प्रकोप होता है, जबकि अन्य भी इससे पूरी तरह से वंचित नहीं रहते। मित्रों, वर्तमान समय की एक और अनुसंधान या खोज जिसका प्रश्न इस अध्याय में उठता है कि परजीवी बीमारियां सामान्य रूप से पशुओं और मानव दोनों में ही पाई जाती हैं और एक से दूसरे में शीघ्रता से प्रवेश कर जाते हैं। उसने इस परजीवी कीटाणु की सूची में सुअर की बीमारी, डिप्थीरिया टर्की पक्षी में, घोड़ों में भी ऐसे रोग मिलते हैं। मूसा को इन बीमारियों की समझ नहीं थी और न ही मिस्र देश के वैद्य इसके बारे में कुछ जानते थे, परंतु ईश्वर जानते हैं, इसलिए उसने अशुद्ध और शुद्ध वस्तुओं में अंतर किया। क्या यह इतिहास से सिद्ध हो गया, अर्थात सिद्ध हुआ है? सन 1885 में पेरिस एकेडमी में डॉक्टर नोएल डे मुसी के वक्तव्य पर ध्यान दें। रोग बीमारी फैलाने वाले कीटाणु रोग जंतुओं ने आज के रोग निदान से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पाया है और उसने मूसा के दिमाग में भी स्थान पाया था, क्योंकि जितने भी स्वास्थ्य संबंधी नियम बनाए गए थे वे उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। उसने इब्रानी भोजन वस्तुओं में से उन सभी प्राणियों को वर्जित किया जिससे बीमारियां फैलती है। यह जंतु या कीटाणु उस पशु के लहू में उपस्थित होते हैं और इसलिए उस पशु के लहू को खाद्य के रूप में उपयोग में लाने से पहले उसे लहू के साथ बहा कर निकाल दिया जाता है। मूसा को यह कैसे पता था? यदि परमेश्वर पिता उसे न बताते तो यह बात मूसा को कभी पता नहीं चलती। डॉक्टर के लॉग फिर बताते हैं, जब प्लेग जैसी प्राणनाशक बीमारी से पूरा यूरोप खाली होने लगा तब यहूदी उस रोग की बाधा से वंचित रहे। बाकी जो गैर यहूदी थे वो क्रोधित होकर यह सोचने लगे कि यहूदियों ने जानबूझकर उनके कुएं में कुछ कीटनाशक दवाइयां डाल दी है, अर्थात जहर डालकर दूषित किया है ताकि वे मर जाएं। प्रोफेसर होसमेर ने लिखा, इसराइल के संपूर्ण इतिहास में कानून बनाने वाले लोगों की बुद्धिमानी इस विषय में सराही गई है कि महामारी के दौरान यहूदियों से अधिक बाकी लोग प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, यहूदियों का जीवन काल अंतराल भी औरों से अधिक पाया गया। वर्तमान समय में भी जीवन बीमा कार्यालय में देखा गया कि यहूदियों के जीवन बीमा या जीवन काल अन्य लोगों से अधिक लंबा होता है। डॉक्टर बेहरेंडस कहते हैं, प्रुसिया में भी यहूदियों का जीवन काल अन्य लोगों से 5 वर्ष अधिक पाया गया, लेकिन अब यहूदी अपने खान पान के नियमों को तोड़ रहे हैं और यह अंतर कम होता जा रहा है। एक समय था कि यहूदियों का जीवन काल अपने पड़ोसी अर्थात गैर यहूदी से दुगुना होता था। मित्रों, आज हमारे लिए इसमें कई सबक हैं। हम इसराइल को उसकी भौतिक वस्तुओं पर जोर देने तथा आध्यात्मिक कमी होने के लिए दोष दे सकते हैं, या इतना अधिक आत्मिक बातों पर जोर डालें कि सांसारिकता भूल जाए। तब एक मसीही को अपने शरीर को नहीं भूलना चाहिए कि वह क्या खाता है। देह का सदुपयोग और दुरुपयोग भी सही ढंग से करना एवं उसकी पूरी परवाह या देख रेख भी करना चाहिए। उसे स्मरण रखना चाहिए कि देह परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा भी, क्योंकि यदि कोई वस्तु भौतिक है तो उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी भूला नहीं जा सकता। मित्रों, आजकल यह भी सिखाते हैं कि हम जो चाहें वह खा सकते हैं। यदि आप सांप खाना चाहें तो सांप खा सकते हैं। खाना खाने में कोई आध्यात्मिक मूल्य प्रकट नहीं होता है। वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण अंधविश्वास पैदा करता है। इस संबंध में निम्न धर्म शास्त्र के उदाहरण देखें। रोमियों की पत्री 14 अध्याय के 14 पद में लिखा है, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु ने मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय के 8 पद में हम पाते हैं, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो कुछ लाभ नहीं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 13 में लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। पहला कुरिन्थियों 10 उसके 31 पद में लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मित्रों, हमें समझना चाहिए कि पेटूपन बिल्कुल मना है। संयम या मध्य त्याग एक अनुग्रह प्राप्त विश्वासी के लिए आदेश है। आइए अब हम इसकी रूपरेखा को देखें। दैनिक जीवन में पवित्रता अध्याय 11 और 12, परमेश्वर के लोगों के लिए भोजन अध्याय 11, इसमें हम पहला देखते हैं, शुद्ध और अशुद्ध जानवर धरती पर पद 1-8, दूसरा शुद्ध और अशुद्ध जंतु जलचर पानी में पद 9-12, तीसरा शुद्ध और अशुद्ध उड़ने वाले जीव जो आकाश में पद 13-19, चौथा शुद्ध और अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु जो जमीन पर पद 20-23, पांचवा अशुद्ध पशुओं की लोथ पद 24-38, छठवां शुद्ध जानवरों की लोथ पद 39-40, सातवां रेंगने वाले जीव जंतुओं से संक्रामकता पद 41-45, आठवां शुद्ध और अशुद्ध जीवों का वर्गीकरण पवित्र ईश्वर द्वारा पद 46-47। अब हम देखते हैं शुद्ध एवं अशुद्ध जानवर जो धरती पर पाए जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1-2 पद, जहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इसराइलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं, उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। मित्रों, परमेश्वर ने विभाजन की एक सीधी रेखा खींची है। ज्योति व अंधकार, दिन व रात, सफेद व काला, गलत व सही, शुद्ध व अशुद्ध, और परमेश्वर ने ही उजाला और अंधेरा में अंतर डाला। उसका इरादा मानव स्वभाव में जांच पड़ताल की बुद्धि को इतना तीव्र करना है कि वह भी ईश्वर द्वारा किए गए इस अंतर को पहचानने में सतर्क रहे। परमेश्वर चाहता है कि मानव भले से प्रेम रखे और बुराई से तुच्छ जाने। इस युग में मानव की संवेदनाएं इन तीव्र विभिन्नताओं के मध्य सही और गलत, अच्छा और बुरा आदि में धूमिल पड़ती जा रही है। मित्रों, जीवन की प्रत्येक वस्तु में उसे नैतिकता के धूमिल क्षेत्र में धकेला जा रहा है। इन विभिन्नताओं अर्थात भेदभाव द्वारा परमेश्वर मनुष्य को वेदी और मसीह यीशु के बहाए हुए लहू की ओर, शुद्धता तथा क्षमा की ओर आकर्षित करना चाहता है। परमेश्वर नियम निर्माण करता है और कोई पूछता है, आप कैसे जानते हो कि यह सही है या गलत है? सही वही है जिसे ईश्वर सही बताता है, यह उसका विश्व मंडल है। क्या आप उसके बनाए नियमों से श्रेष्ठ कहीं और पा सकते हैं? मित्रों, उसने स्वाभाविक जगत के लिए नियम बनाए। क्या आप गुरुत्वाकर्षण नियम को झुठला सकते हैं और पृथ्वी पर से छलांग लगा सकते हैं? यह महंगी यात्रा होगी और ऐसा करने से करोड़ों रुपया खर्च भी होगा। ऐसा करने में सरकार कर्ज में डूब जाएगी। यदि आप करेंगे तो आप भी कर्ज में डूब जाएंगे। मित्रों, परमेश्वर प्रतिदिन के जीवन क्षेत्र में घूमता है और उसमें मनुष्य के खाने से निकट और कोई वस्तु नहीं है। प्रभु कुछ वस्तुओं के शुद्ध व अनेकों के अशुद्ध होने की घोषणा करते हैं। मनुष्य को स्मरण रखना होगा कि वह पाप भरे जगत में जी रहा है। मानव को भले और बुरे की पहचान होनी चाहिए तथा उनका चुनाव भी करना होगा। यह बंटवारा नैतिक था, तो भी शुद्ध जानवर तंदुरुस्त थे और शरीर को उत्तम भोजन प्रदान करते थे। फिर मूसा की आर्थिक व्यवस्था के पहले से, और हम जानते हैं कि नूह ने भी इस प्रकार के अंतर को समझा और उसका सम्मान भी किया। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि खाद्य पशुओं, मछली और पक्षी का चयन वर्षों पूर्व से आज तक सामान्य प्रचलन में है। यह कोई अचानक घटना नहीं है। ईश्वर ने अंतर किया और आप कुछ का प्रयोग करते हैं अथवा कुछ का प्रयोग नहीं करते हैं। एक दूसरी विशेषता कि कुछ जानवर उस क्षेत्र में उन दिनों में स्वच्छ स्वस्थ समझे जाते थे, जबकि दूसरे स्थानों में यह सच नहीं भी हो सकता है। आज ऐसा शुद्ध व अशुद्ध का कोई आदेश हमारे सामने नहीं है। इस अध्याय में अनेक नैतिक मुद्दे भी हैं। मानव पाप के संसार में रहता है। परमेश्वर चाहता है कि इस तथ्य की पुष्टि करे, चयन अर्थात चुनाव भी करना चाहिए। पतित मानव के लिए अर्थात गिरे हुए मनुष्य के लिए अदन की वाटिका के बाहर भी एक वृक्ष है, जिसके लिए ईश्वर कहता है कि उसका फल नहीं खाना चाहिए। मेरा मानना है कि नैतिक उद्देश्य प्राथमिक वही है। आपको स्मरण होगा कि पतरस के पास जब चादर उतरी जिसमें सब प्रकार के पशु पक्षी मौजूद थे, जब परमेश्वर ने उससे खाने के लिए कहा, वह तैयार नहीं था। प्रभु ने उससे कहा, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 11 से 15 पद में हम इसे पाते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर नियम बनाते हैं। यह अत्यंत रोचक है। परमेश्वर नियम निर्माता है और मानव को परमेश्वर के नियम अनुसार चुनाव करना चाहिए। आइए हम लाइव्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पशुओं में से जितने चीरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हैं। मित्रों, जिन जानवरों का खाद्य में उपयोग हो उसका निर्धारण इसी नियम से होता है। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 अध्याय उसके 6 पद में दोहराया गया है। इसकी सूची में बैल, भेड़, बकरी, हिरन, चिकारा, मृग, बनैली बकरी, सांभर, नील गाय और बनैले भेड़ हैं। लय व्यवस्था में कुछ ऐसे उदाहरण है जो नियम और सिद्धांत में अशुद्ध थे। व्यवस्था विवरण में सिद्धांत और नियमों पर जोर नहीं दिया गया, परंतु शुद्ध जानवरों की एक वृहत सूची प्रस्तुत की गई। लय व्यवस्था में नकारात्मक और व्यवस्था विवरण में सकारात्मक पक्ष पर जोर डाला गया है। लय व्यवस्था में शुद्ध एवं अशुद्ध जानवरों का अंतर स्पष्ट है, यद्यपि यह कोई नई आज्ञा नहीं है। भेद में जैविक अंतर नहीं, परंतु स्वास्थ्य अवश्य है। कुछ अन्य जातीय राष्ट्र, उदाहरण के लिए फारस ने कुछ ऐसे जानवरों को गिनाया जो अच्छे ईश्वर के थे, जबकि दूसरे जानवर बुरे ईश्वर की उत्पाद समझे गए। ईश्वर ने समस्त जानवर की रचना की है, न तो पशु का स्वभाव उसका पाप या गुण से भेद किया गया है। उदाहरण के लिए शेर अशुद्ध प्राणी था, परंतु वो प्रभु यीशु को दर्शाता है और वो यहूदा वंश का सिंह घोषित हुआ, इसलिए मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है। देह और आत्मा में किसी प्रकार का रहस्यपूर्ण संबंध नहीं, जैसा कुछ विधर्मी गुटों के लोग मानते हैं। पशु का स्वभाव जो उसे खाता उसमें प्रवेश नहीं करता है। मित्रों, यह अंतराल दुर्भाग्यपूर्ण है, वह अंधविश्वास ही कहा जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि सामिश व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट बन जाता है, परंतु मैंने कुछ ऐसे शाकाहारी लोगों को भी देखा है जो अत्यंत नीच प्रवृत्ति के होते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे विचार मूर्खतापूर्ण है। मित्रों, इसराइल के लिए इस प्रकार का अंतर शुद्ध व अशुद्ध जानवरों के बीच परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वह उनको अन्य राष्ट्रों से अलग रखना चाहता है। आज भी शब्द कोशेर प्रत्येक के लिए एक विशेष अर्थ रखता है। उन्हें लगातार स्मरण दिलाते हैं कि वे एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां हर कदम पर निर्णय अर्थात चुनाव लेना है। मित्रों, मसीही के लिए एक अत्याधिक और अत्याधमिक ग्रहण करने वाली बात है। हमने देखा कि गोश के संबंध में किसी धार्मिक विधि के पालन का कोई अर्थ नहीं है, परंतु एक उक्ति है, चिंतन मनन ध्यान। कि दिलचस्प बात उसकी उस तुलना से है कि गाय घास चबाती या जुगाली से की जाती है। भजन संहिता एक में हम पाते हैं उसके दो पद में, वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मित्रों, गाय का चबाना या जुगाली उपयुक्त शब्द ध्यान मनन विश्वासियों के आत्मिक लाभ के लिए है। इसी प्रकार खुर फटना विश्वासियों की अलग चाल की ओर संकेत है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हैं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इफिसियों की पत्री 4:1। आगे हम पढ़ते हैं इफिसियों 5:2-15 में लिखा है, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। हम आगे पढ़ते हैं 2 तीमोथी की पत्री 3:14-15 में लिखा है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन तथा उसकी चाल दोनों का संबंध विश्वासियों के जीवन से जुड़ा हुआ है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ रह कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हम याकूब के पत्र 1:22 में पढ़ते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे मित्र, विश्वास की चाल परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ी हुई है। यदि आप इस संसार से गुजर रहे हैं तो आपको पवित्र वचन को जुगाली करना पड़ेगा और एक अलग तरह की चाल चलनी होगी जो वचन के अनुसार है। बाइबल अध्ययन करने वाला विश्वासी जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को व्यवहार में लाता है उसकी पहचान परमेश्वर के बालक की तरह होती है जब लोग उसके काम और चाल में सामंजस्य देखते हैं। मित्रों, किस प्रकार की पंक्तियां आप बना रहे हैं? वर्षों पूर्व एक व्यक्ति की कहानी मुझे स्मरण आती है जब किसी ने अचानक ही उसके हाथ में एक पर्चा पकड़ा दिया। उसने पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, एक पर्चा है। उसने पर्चे को वापिस करते हुए कहा कि वह उसे नहीं पढ़ सकता। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी एक चुनाव का समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देते हैं या नहीं। आज हम इस अध्ययन में विशेष करके इन बातों को सीखते हैं कि अशुद्ध और शुद्ध क्या है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम शुद्ध हों और परमेश्वर के निकटता में आए, उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में उसे जगह दें ताकि ये पवित्र मंदिर जिसमें उसका घर है वो इसमें वास करे और इतना ही नहीं हमारे जीवन का संचालन भी करे। जिस प्रकार से इस अध्ययन में हमने पाया है कि उसने शुद्ध और अशुद्ध ठहराए ताकि लोग उसको पहचान सकें, अलग किए जा सकें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
शुद्ध श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।